ओम शांति। स्वर्णिम युग बनाने वाला हम सबका मीठा बाबा, उसकी योजनाओं को तो हम जानते भी हैं और उसकी इस योजना में मददगार भी हैं। शुरू शुरू में जब हम मधुबन में आए थे तो मधुबन के आगे एक नाम लिखते थे, मधुबन स्वर्ग आश्रम। मधुबन स्वर्ग आश्रम हर पत्र के ऊपर लिखा जाता था और आने वाले भाई बहनें भी यही अनुभव करते जैसे हम स्वर्ग में आए हैं। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई भी प्रकार की दुनिया की तरह हलचल नहीं, ऐसे शुद्ध पवित्र एकांत शांत खुशनुमा वातावरण में आने वालों को अनुभव होता है कि बाबा ने आने वाली सतयुगी दुनिया के पहले अपने इस घर को ही स्वर्ग आश्रम बना दिया। कैसी प्लानिंग है, कैसी योजना है, आप सब ने अगर यज्ञ इतिहास पढ़ा है, सुना है तो जानते होंगे। शिव बाबा जिसको हिमिल्ली गॉडफादर कहते हैं, वो आते ही हैं धरती पर सतयुग की स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, स्वर्णिम युग बनाने के लिए। कैसी योजना है, किस प्रकार से बाबा ने इस कार्य का प्रारंभ किया। सबसे पहले बाबा कहते हैं, मैं इस सृष्टि पर आने के पहले सूक्ष्म लोक की रचना करता हूं। उसकी योजनाएं सुनना, कैसे बाबा ने योजनाएं बनाई। सूक्ष्म लोक की रचना करता हूं, उसमें ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी तीन देवताओं की, आकारी देवताओं की पुरियां हैं और मेरा मूल कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा प्रारंभ होता है। मैं नई सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा करता हूं। साकार में अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप ब्रह्मा का तन लेकर के फिर अवतरित होता हूं। जिस तन में आता हूं उसका नाम देता हूं प्रजापिता ब्रह्मा। अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा है, वो प्रजापिता नहीं है। तो संपूर्ण ब्रह्मा को साथ लेकर के फिर मैं इस आकार तन में प्रवेश करता हूं और नई सृष्टि बनाने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ की स्थापना करता हूं। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कोई विपदा को टालने के लिए यज्ञ रचे जाते हैं। तो इस बड़े सेठ ने, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और इसको संभालने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। ये यज्ञ रचा इसलिए गया कि इस कलयुगी सृष्टि का इसमें विनाश स्वाहा हो, परिवर्तन हो, हमारे विकारी पति संस्कार सब भस्म हो यज्ञ के अंदर, फिर ये नई दुनिया कलयुग बदल करके सतयुग बन जाए, नर्क स्वर्ग में बदल जाए। इस योजना का प्रारंभ करने के पहले ब्रह्मा बाबा को एकांत वास कराते हुए बनारस के अंदर इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दृश्य दिखाया और इतना भयानक विनाश जो उस समय तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे ऐसे मिसाइल्स, एटम बम, हाइड्रोजन बम छूट रहे हैं, चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं दुनिया का नाश कर रही हैं, बड़ी बड़ी मंजिलों के मकान एक धर्म धराशायी होते जा रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कोई ज्वालामुखी फट रहे हैं, बहुत भयानक दर्दनाक सीन विनाश की ब्रह्मा बाबा को पहले पहले दिखाई, साक्षात्कार कराया। और वो साक्षात्कार जब हो रहा था तो बाबा को बहुत जैसे पीड़ा होती है, कोई ऐसी सृष्टि ऐसी कैसे गति होगी इसकी, क्या होगा, ये कौन कह रहा है, कौन दिखा रहा है। तो बताते ब्रह्मा बाबा की आंखों में बहुत अश्रु धारा बहने लगी, दुखी होकर के द्रविड़ हो गए उसको देख करके। फिर उस सीन को बाबा ने मर्ज किया, मर्ज होते ही दूसरी सीन इमर्ज हो गई और उस सीन के अंदर कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं और वो सितारे देवी देवताओं की ड्रेस में बदलते जाते हैं और पूरा ही ये विश्व जिसको हम उस समय पूरे विश्व को भारत कहते, पूरा ही विश्व एक बहुत सुंदर सुखमय संसार जहाँ बड़े सुंदर बगीचे हैं, फुलवाड़ियाँ हैं, फलों के पौधों बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, महल भी हीरे जवाहरात सोने के हैं, देवी देवताएं उस धरा पर जैसे अवतरित हो रहे हैं और सारी स्वर्णिम दुनिया बन गई। और फिर एक आवाज आई कि ये दुनिया तुम्हें बनानी है। साकार ब्रह्मा बाबा ये दुनिया कैसे बनाएगा, वो तो एक बिजनेसमैन, एक साधारण व्यक्ति, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये कलयुग का विनाश दिखाया और सतयुग की स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया कि ये सतयुगी दुनिया तुम्हारे द्वारा बनानी है मुझे। फिर ब्रह्मा बाबा को जो बिजनेस था हीरे जवाहरात का, उसमें उसकी दिल लगी, उनको लगने लगा ये तो सब पत्थर है, इसको क्या बिजनेस करना। और बाबा ने सारे बिजनेस को समेट कर बाबा की प्रेरणा से सतयुग की स्थापना की नींव सिंध हैदराबाद में शुरू हुई। गीता पाठ किया, पहले गीता ही सामने थी, लेकिन गीता पाठ करते करते शिव बाबा का पाठ शुरू हो गया, ज्ञान देने का, ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई। कायदे मुजीब 1937 में दिवाली के दिनों में विधिवत ओम मंडली का निर्माण हुआ और ओम मंडली में बाबा का एक ही स्लोगन, सतयुगी दुनिया मैं इन कन्याओं माताओं के द्वारा बनाऊंगा, वंदे मातरम। बहनों को आगे किया, संस्था को रजिस्टर्ड किया ओम मंडली के नाम से, ओम राधे के नाम। ओम राधे माना कौन, मम्मा, मम्मा का राधे नाम था लौकिक में। ओम राधे के नाम से यज्ञ की शुरुआत हुई। फिर विघ्न आए, कई परीक्षाएं आई, क्योंकि बाबा की दृष्टि से लोगों को सतयुग का स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। श्री कृष्ण पूरी दिखाई देती थी और श्री कृष्ण के साथ सब गोप गोपियां जैसे डांस करने लगते थे, खुशी में नाचने लगते थे, ग्वाल बाल बन करके, तो लोग सत्संग के अंदर ढेर आने लगे। कहते थे जैसे पैसे पैसे में बाजार के अंदर कुल्फी मिलती है, ऐसे ही ओम मंडली में पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है, स्वर्ग में जाते हैं। इतना सहज था, जो आ गया बाबा की दृष्टि पड़ी या ओम की ध्वनि लगाई, सबके सब स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए साक्षात्कार तो करा दिया, लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं के लक्षण भी धारण करने पड़ेंगे। अब वो लक्षण जब धारण करने लगे कि हमें देवता बनना है, तो पहले तो खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम ये जो मांस मदिरा सिगरेट जो चलता है घरों में, इसका निषेध, मुझे देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, कृष्णपुरी में जाना है, तो सबसे पहले भोजन की शुद्धि। फिर दूसरा जब बात आई कि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण पावन हैं, तो हरेक ने ये संकल्प कर लिया कि अगर हमें ऐसा बनना है, श्री कृष्णपुरी में अगर चलना है तो पवित्र जीवन जीने है, कुछ भी हो इस व्रत को दृढ़ता के साथ पालन करना है। सतयुग की दुनिया की प्लानिंग में ये दो मूल बातें सभी ने धारण कर ली। साक्षात्कार हुआ स्वर्ग का, लेकिन उस स्वर्ग के साक्षात्कार के साथ लक्ष्य दिया कि ऐसा बनना है, तुम्हें ही बनना है, तो ऐसा बनने के लिए आपको पवित्र जीवन जीनी है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं, इनको जीत लो तो तुम स्वर्ग में कृष्णपुरी में चल सकोगे। खान पान को शुद्ध करो, क्योंकि देवताओं को जो भोग लगाते हैं उस भोग को ही तुम्हें खाना है, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं को भोग तो कोई ऐसे वैसी चीजों का लगाते नहीं है, शराब सिगरेट तो छोड़ो, लहसुन प्याज का भी नहीं लगाते उनको, तो कितना सात्विक शुद्ध बहुत पवित्र भोजन खिलाते हैं। तो बाबा ने ये साक्षात्कार कराते, स्वर्ग के सीन दिखाते हुए सबके सामने एक बहुत सुंदर लक्ष्य दिया, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सबने धारण करना शुरू कर दिया। कलयुग के अंदर तो वो लक्षण धारण करने लगो तो क्या होगा, घर घर के अंदर हंगामा, ये कैसे हो सकता है, पति पत्नी साथ रहें, शादी किस लिए किया, विकार नहीं, खान पान बहुत शुद्ध, तो इसके कारण बहुत सहन करना पड़ा बाबा को। बाबा कहते थे साकार में कि रास्ते चलते मैं ब्राह्मण तो फंस गया, वाट बेंदे वामन पातो, मैं ब्राह्मण फंस गया, मुझे तो पता ही नहीं था शिव बाबा का ये कार्य सतयुग बनाना है और स्वर्ग की रचना के लिए बाबा ने ये धारणाएं बता दी, ये लक्ष्य बता दिया, और जिन्होंने किया वो तो बड़े सुखी रहे, लेकिन घरों में तो झगड़े हो गए, हंगामा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो जब हंगामे पूरे हुए, फिर बाबा ने इन आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उनके संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए तपस्या कराई। 2 बजे उठ करके समुद्र के किनारे जा करके एकांत में बैठ करके अपने संस्कारों का शुद्धिकरण हो, देवता बनना है तो संस्कार बड़े दिव्य चाहिए, अलौकिक चाहिए, स्वर्ग में जाने वाली आत्मा के संस्कारों में किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए, और उसके संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए केवल योग है, तपस्या है। तो 14 साल पूरा ही हैदराबाद कराची में 1950 तक कुछ समय पेपर भी आए, लेकिन उनको पार करते हुए सभी ने अपने संस्कार शुद्धिकरण के लिए, दिव्य संस्कार बनाने के लिए तपस्या की। उसके बाद भारत में आए। अब सतयुगी दुनिया आएगी तो कौन आएंगे, केवल देवी देवताएं, राजा रानी तो नहीं आएंगे, प्रजा भी चाहिए, बहुत बड़ा कुटुंब होगा, अनेक राजाएं होंगे, पूरा विश्व को बदलना है, ये बहुत बड़ी भगवान की प्लानिंग, कैसी स्वर्णिम दुनिया बनानी है। तो स्वर्णिम दुनिया में जो आदि स्थापना का समय है सतयुग का, केवल 9 लाख से शुरू है, 9-10 लाख बाबा कहता है ये सतयुगी सृष्टि की शुरुआत है। अब 9-10 लाख कम से कम पहले इस संगम के समय पर देवता बनने के लायक बने, वो लक्षण धारण करें, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए। तो बाबा ने फिर नई दुनिया बनाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली, हॉस्पिटल खोला, रूहानी हॉस्पिटल, जहां पर आत्माओं का इलाज किया जाए। शरीरों का तो इलाज उस हॉस्पिटल में होता है, लेकिन बाबा की प्लानिंग के अंदर जगह जगह पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक गॉडली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, भारत के अंदर शुरू हुआ, और साथ साथ एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल की स्थापना हुई कि रोगी हैं, सब आत्माएं विकारों के, बीमारियों के अधीन हैं, ग्रस्त हैं, इन सब का इलाज हो। और उसके लिए बाबा ने ज्ञान और योग के इंजेक्शन तैयार कराए, बहुत सारे कोर्सेज बनवाए जिससे उनका इलाज किया जा सके, पढ़ाई के लिए अनेक प्रिंसिपल्स रखे, प्रोफेसर्स रखे, जगह जगह पर सेवा केंद्र खुलवा दिए, अनेक टीचर्स बहनों को समर्पित करा दिया। आज हजारों बहनें आपकी सेवा में, पूरे भारत की सेवा में, देश विदेश की सेवा में उपस्थित हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग दे रही हैं, पढ़ा रही हैं। किस लिए पढ़ा रही है? इस भारत भूमि को बोलो स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग की भूमि में परिवर्तन करने के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। भगवान की ये प्लानिंग है, ईश्वरीय प्लानिंग है। और उसमें देश विदेश में जो इस धर्म की आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, शिव बाबा तीन धर्मों की स्थापना करते हैं। संगम युग पर सबसे पहले ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण बने, ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना। और ब्राह्मण माना जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं। ब्राह्मणों की क्या निशानियां बताते हैं? चार पांच निशानियां बताता हूं, सोचना। पक्के हैं हम ब्राह्मण के, ऐसे सिर्फ कहलाते हैं, हम कोई कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, हम सब ब्रह्मा मुख की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। और ब्रह्मा मुख की संतान होने के कारण ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, तब हम कहलाते हैं हम ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो मुख वंशावली सच्चे पक्के ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी चार निशानियां। सबसे पहले वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अमृत वेला जिसको हम कहते हैं, उसमें उठ करके बाबा का ध्यान करेंगे, ब्रह्म में विचरण करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म लोक में विचरण करना बुद्धि से, फिर ब्रह्मा भोजन खाना, बहुत शुद्ध शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ब्रह्माचारी बन करके रहना। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म घर का विचरण करते हैं, ब्रह्मा भोजन का पान करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं और ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं, वही ब्राह्मण है। देवता बनने के लिए पहले ये पांच बातें तो आपको धारण करनी पड़ेंगी। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप लक्ष्य के तरफ बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्म प्लानिंग है, स्वर्ग बनाने की प्लानिंग है, लेकिन स्वर्ग में चलने के लिए स्वर्ग के देवी देवताएं कैसे आएंगे, कहां से बने? कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, पढ़ाई का लक्ष्य है। हम सब शुद्ध प्रवृत्ति में रहते हुए, हमारा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति है, जीवन में रहते मुक्त, विकारों से मुक्त। और ऐसे ही सतयुग आ जाएगा और सब मुक्त हो जाएंगे विकारों से, उसके लिए संगम है। पहले हमें संगम पर विकारों को छोड़ करके पवित्र जीवन जीनी है। जिस आत्मा ने इस समय जीवन मुक्ति की स्टेज का अनुभव किया, वही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करता है। इस समय बाबा की प्लानिंग को आप सब देख रहे हो, इतने वर्षों से सतयुगी दुनिया बनाने का परमात्म कार्य कितना विस्तार को पा चुका है। अभी सतयुग की जो आदि रचना है लगभग तैयार हो चुकी है और जब उसकी तैयारी, बाबा ने कई बार कहा है, जब उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो इस कलयुग को जाना होगा, इसकी विदाई होगी। तो इसके विदाई की भी तैयारी आप सब देख रहे हो, चारों तरफ से इसके विनाश के लिए कितनी तैयारियां हैं। वाम तो इतने तैयार हैं जो एक बार नहीं कई बार दुनिया की सफाई की जा सकती है, लेकिन भारत अविनाशी खंड है। यहां पर एटॉमिक बॉम्ब्स का वार हो तो यहां तो फिर हजारों साल तक घास भी नहीं निकलेगी। इसलिए बाबा कहता है ये भारत भूमि मेरी अवतरण भूमि है, भारत भूमि को मैं स्वर्ग की भूमि बनाता हूं। इस भूमि पर खून की नदी तो बहेगी, गृह युद्ध होंगे, खूने नाहक खेल होंगे, बिना कसूर लोग मारे जाएंगे, लेकिन यही भारत भूमि पर दूध और घी की नदियां बहेंगी, स्वर्ग बनेगा, सतयुग बनेगा, जमुना का किनारा होगा, समुद्र के किनारे पर कोई शहर नहीं बसेंगे, सतयुग के अंदर। कई बार बाबा ने ये रहस्य बताए हैं कि देवी देवताएं जमुना के किनारे अपनी राजधानी बनाएंगे, अभी भी उधर ही है, मथुरा वृंदावन में यादगार बनी हुई है। तो देवी देवताओं के अवतरण की दिनों की अभी बहुत समीपता दिखाई दे रही है, लेकिन देवताएं इस गंदी दुनिया में नरक में पांव नहीं रखेंगे, कलयुग में नहीं आएंगे, इसकी सफाई होगी पहले, और बहुत बड़ी सफाई होगी, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि बहुत गंदगी है, बहुत विस्तार हुआ है इसका। नरक को परिवर्तन करके स्वर्ग बनाने का कार्य परमात्मा का है, तो प्रकृति बहुत बड़ी सफाई करने वाली है। बाबा ने कहा है कोई उड़ाएगा, झाड़ू लगाएगा, कोई बहाएगा, पांचों तत्व सर्वेंट की तरह काम करेंगे, एक बहाएगा, दूसरा उड़ाएगा, तीसरा जलाएगा। ये जो भी सफाई का कार्य है ये प्रकृति के पांचों तत्वों को मिल जाएगा, और मिल गया है, लगभग मिल गया है, सबको कर रहे हैं अपना अपना काम। लेकिन यही प्रकृति जो इस समय तमोगुण रूप में है, ये सतयुग के अंदर अपने सतो प्रधान सतो गुण रूप में होगी, प्रकृति दासी बन जाएगी देवी देवताओं की। कोई भी तत्व किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसके सेवक होंगे, क्योंकि आत्मा प्रकृति जीत होगी। संगम युग पर जिन आत्माओं ने कर्म इंद्रियों को जीता, पहले कर्म इंद्रिय जीत बने, फिर उन्होंने विकर्म करना बंद कर दिया, विक्रमाजीत बने, फिर उन्होंने अपनी पांच तत्वों की शरीर की प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की, बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त की, प्रकृति जीत बने, और फिर कर्मातीत बने। संगम पर जो आत्माएं कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमाजीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं, आने वाली स्वर्णिम दुनिया में वही विश्वजीत विश्व राज्य अधिकारी बनती हैं। अब आप सब देख लेना कहां तक मैंने अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य किया है, कितनी कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, ये सब स्थूल कर्म इंद्रियां मुझ आत्मा के कंट्रोल में हैं। किस लिए तपस्या करते हो, किस लिए भट्टी करते हो, किस लिए इतना समय निकाल करके आते हो, घूमने फिरने तो नहीं आए ना। आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए, स्वच्छ बन जाए, जो इसके अंदर मिक्स हो गई विकारों की बदबू, विकारों की गंदगी, उसको खत्म करने के लिए। जैसे सोने में अगर धीरे धीरे अलाय मिक्स करते करते सिल्वर डाल दें, कापर डाल दें, आयरन डाल दें, सोना कैसा हो गया, मुलम्मे का हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही। फिर जब सुनार के हाथ में आता है तो वो उसको प्योर बनाने के लिए तेज भट्टी जलाता है, और भट्टी के अंदर सोने को पिघला देता है, फिर जो रियल है उसमें 24 कैरेट वो अलग हो जाता है और जो मिक्स है वो अलग हो जाता है। तो उस सोनार ने, शिव बाबा ने ये योग की भट्टी रखी है, जो आत्मा के अंदर अलाय मिक्स हो गई विकारों की, स्वार्थ की, देहमान की, हम इस भट्टी में आ जाए, बैठ जाए, वो अपने आप सारी बदबू सारी गंदगी उसकी मिक्स जितना हुआ सब निकलता जाएगा, आत्मा एकदम प्योर शुद्ध निर्मल बन जाएगी। और जब आत्मा में वो शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता की परसेंटेज उसके अंदर आ जाएंगी, तो बाबा कहता है जब आप बच्चे तैयार हो जाओगे तो आपके लिए स्वर्ग बनाना ही पड़ेगा, सत्युग को आना ही पड़ेगा। तो तैयार है ना सभी, ट्रांसफर करें ना बाबा, अभी तैयार हो गए ना। तो 3 दिन अच्छी भट्टी की है, मैं समझता हूँ जरूर जो ऐसे संस्कार हैं, जो ऐसी कमी कमजोरियां हैं, सब बाबा को अर्पित कर दी होगी। बाबा ये आप ले लो, ये मेरे नहीं है, ये तो रावण की चीज है, मैं नहीं रखूंगा अपने पास। और जितनी आत्मा स्वच्छ पवित्र बन जाएगी वो उतना ही श्रेष्ठ पद प्राप्त कर देगी। राजधानी तो बननी है सतयुग की, और राजधानी में बाबा कहता सब प्रकार के लोग चाहिए, अगर सभी राजा रानी बन जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगा, नौकर चाकर कौन बनेंगे, सफाई करने वाले कौन बनेंगे, सब तो चाहिए ना राजधानी में, कोई झाड़ू लगाने वाला भी चाहिए, कोई दास दासियां बच्चों को संभालने वाले भी चाहिए, सेवा करने वाले भी चाहिए। तो पूरी राजधानी तैयार हो रही है संगम पर, और राजधानी सतयुग की जो बन रही है उसका आधार केवल पढ़ाई है। पढ़ाई में बाबा ने बच्चों को अधिक मेहनत नहीं दी है, 2 शब्दों में पढ़ाया, अल्लाह और बे, 4 सब्जेक्ट पढ़ाई, ज्ञान योग धारणा सेवा, और कुछ अधिक नहीं है। लेकिन जिसने इस पढ़ाई को ठीक तरह से धारण किया, सिर्फ सुना और सुनाया नहीं, लेकिन जिसने उस पढ़ाई को अपने स्वरूप में उतार लिया, वो श्रेष्ठ पद का अधिकारी सतयुग में बन जाएगा। सिर्फ सुन लिया, सुन करके चला गया, तो बाबा कहते हैं बीज तो अविनाशी है, भगवान का ज्ञान एक बार समझ गया, किसी ने दिल से बाबा कहा तो बाबा उसको वर्षा तो जरूर देगा। अल्लाह को पहचान करके अगर बाबा शब्द कह दिया तो बे की भाषा ही उसको मिल जाएगी किसी न किसी जन्म में। लेकिन जो आत्माएं बहुत काल तक अपनी संपूर्ण पवित्र स्टेज में रहेंगी, जो बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाएंगी तन मन धन से, बाबा उन बच्चों को सतयुग की राजाई अवश्य देगा। तो इसलिए अल्लाह और बे को ध्यान पर रखते हुए, मुझे अल्लाह को केवल मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह है अल्लाह। बे है सतयुग की बादशाह ही, और वो सतयुग की बादशाह ही प्राप्त करने के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाया। ज्ञान जो हम सब पढ़ रहे हैं, आत्मा का समझ में आया, परमात्मा को समझा, पुनर्जन्मों को समझा, कर्मों को समझा, अपने घर को समझा, अपने पार्ट को समझा। बाबा ने एक एक बच्चे को समझदार बनाया है, और समझ के आधार से आज बाबा ने 3 शब्द प्रयोग किए मुरली के अंदर, योगी जीवन के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ। ध्यान गया होगा मुरली पर, तो ध्यान जाता है ना। 3 चीजें अगर जीवन में आ गई, बहुत धैर्यता, ज्ञान से ही धैर्यता आ सकती है, नहीं तो छोटी छोटी बातों में इतना धैर्य हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते, गुस्से में आ जाते, पारा उठ गर्म हो जाता। लेकिन जब ये ज्ञान आ जाता है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, हर एक एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार खेल खेल रहा है, बहुत ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया। जिसने यथार्थ रीति से स्वयं को पहचाना, इस ड्रामा के नाटक को पहचान लिया और बाबा को पहचान लिया, वो कहीं भी अटकेगा नहीं, कहीं भी चटकेगा नहीं, कहीं लटकेगा नहीं। कोई भी देहधारी आत्मा जो सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए आई है, जो पार्ट बजा रही है, वो सब पार्टधारी हैं, किसी में भी मेरी ममता मोह अगर है तो दुख का कारण क्या है? कलयुग में मोह ममता ही है ना। एक तरफ स्वार्थ है, संबंध बनाए, स्वार्थ रखा, उस स्वार्थ ने बंधन बना दिया और बंधन दुख का कारण बन गया। संगम पर बाबा अपने बच्चों को बंधनों से मुक्त करके श्रेष्ठ संबंध में लाता है, कर्म बंधन न बने इसका ज्ञान देता है। कर्म करने की छुट्टी है सबको, क्योंकि कर्म के बिना तो इस कर्म क्षेत्र पर हम रह ही नहीं सकते। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, सोना, व्यवहार में आना, ये सब कर्म ही तो है। जो कुछ हम कर क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं वो कर्म बंधन न बन जाए इस पर बहुत अटेंशन देना। ज्ञान इसीलिए मिला है कि कोई भी आत्मा कर्म के बंधन में न बंधे। कर्म करो, सबके साथ पार्ट बजाओ, सब संबंध निभाओ, लेकिन ये सेवा साथी हैं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, पहले इस मैं और मेरे को मारो। ये सब खिलाड़ी हैं, ये सब पार्टधारी हैं। इस ज्ञान को जिसने यथार्थ समझ लिया वो देवता बन जाएगा, वो कहीं भी किसी भी बंधन में बंधेगा नहीं। सर्व संबंध एक बाबा से उसके जुट जाएंगे। इसलिए ज्ञान की सब्जेक्ट को अगर यथार्थ रीति से समझा है तो सिर्फ समझ लिया, दूसरों को सुना दिया, कोर्स करा दिया, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान माना समझ, और वो समझदार व्यक्ति कोई भी नया बंधन संगम पर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अब वापस जाने का समय है। वो बंधन दुख देगा, किसी भी प्रकार का बंधन है, चाहे आप बिजनेस का ही बंधन बांध लो, चाहे संबंधों का बंधन बांध लो, नौकरी टोकरी का बंधन बांध लो, अगर वो बंधन है, संबंध की रीति से नहीं है, केवल खेल खेल रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, संबंध सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं, अगर ऐसी निस्वार्थ भावना आ गई, ज्ञान को यथार्थ समझ लिया, तो आत्मा इस जीवन में ही मुक्त स्थिति का अनुभव करेगी। और जो मुक्त हो गया वो सत्ययुग में जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर लेगा। दो ही वर्षे बाबा से मिलते हैं, एक मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। संगम पर इन विकारों से मुक्ति, इन बुराइयों से मुक्ति, इन कर्म बंधनों से मुक्ति अगर हमने प्राप्त कर ली तो सतयुग के अंदर हमें जीवन मुक्त स्थिति मिलेगी। जीवन में रहेंगे, जीवन से मुक्त नहीं है, लेकिन जीवन में रहते हुए कोई भी बंधन आत्मा को बांधेगा नहीं। इसलिए देवी देवताओं को दिखाते हैं सदा दाता स्वरूप है, सदा खुशनुमा है, सदा भरपूर है, प्रसन्न है, कोई बंधन नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसी देवताओं की नगरी भगवान बनाने आए हैं, और उस नगरी में ले चलने के लिए बाबा अपने बच्चों को इस संगम पर लायक बना रहे हैं। हर एक ध्यान देना, जब हमारा इतना ऊंचा लक्ष्य है, क्या वो लक्षण मेरे जीवन में आ रहे हैं? मेरी चलन कैसी है, मेरा बोलचाल कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी अंदर की नेचर कैसी है? क्या हम सबके साथ मिलकर के सरलता के साथ, मधुरता के साथ व्यवहार करते हैं कि देवता बनने वाले गुस्सा करेंगे, देवता बनने वाले झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे? अगर सचमुच मेरे सामने लक्ष्य है ऐसा बनना है तो वो सब लक्षण संगम पर धारण करने हैं, और वो धारण तब होंगे जब हमारे जीवन में यथार्थ रूप से ज्ञान और योग की दो सब्जेक्ट पर ध्यान होगा। बाकी दो सब्जेक्ट अपने आप आ जाते हैं। जिसने ज्ञान को यथार्थ समझ लिया, ज्ञानी तो आत्मा सब बंधनों में, संबंधों में आते हुए भी बंधन मुक्त। कहीं भी नया संबंध क्रिएट नहीं करना, पुराने तो चुक तो कर रहे हैं, योग से, कर्म भोग से, शरीर की भोगना से, पुराना तो सब चुक तो कर रहे हो, लेकिन कई बार चुक तो करते करते किसी में लगाव हो गया, कोई बहुत अच्छा लगने लगा, कोई आत्मा का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया, सहयोग देते देते बंधन बना लिया हमने, बहुत अच्छा है, बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है, उसके साथ अटैच होने लगे, और वो बंधन आत्मा को फिर खींच रहा है, योग नहीं लगने देता। किसी से नफरत कर ली, घृणा कर ली, उसकी शकल देख ली तो डिस्टर्ब हो गए, वो भी बंधन बन गया। इसलिए ध्यान देना, ज्ञानी तो आत्माएं न किसी से दोस्ती रखती हैं, स्पेशल दोस्त नहीं बनाती, और किसी से दुश्मनी भी नहीं रखती, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो अगर बाबा के ज्ञान को यथार्थ समझा है हमने, योग के द्वारा आत्मा को पावन बनाया है, योग अग्नि है, और इस अग्नि से हमने अपने जो जंक लगी, खाद पड़ी, उसको निकाला है, तो आत्मा एकदम रियल गोल्ड बन जाएगी। और रियल गोल्ड की निशानी क्या होगी? सहज मोल्ड कर लेगा, हर परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर लेगा, कैसी भी बातें आएंगी उसके अंदर फंसेगा नहीं, टेंशन में नहीं आएगा, प्रश्नों में नहीं उलझेगा, प्रसन्न चित्त स्थिति उसकी बन जाएगी, आत्मा बिल्कुल निर्मल स्वच्छ मधुर, उसका व्यवहार बड़ा शीतल बन जाएगा। इसलिए योगी के लक्षण क्या दिखाते हैं? मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, दुख सुख, जीत हार, सब में समान स्थिति। वो योगी के लक्षण इसी जीवन में दिखाई देने लगे तब तो कहेंगे हम योगी हैं, कोई ने महिमा कर दी, फूल गए, बहुत अच्छे हैं हम, अहंकार आ गया, और नहीं जरा भी कोई ने कुछ इधर उधर बात गिलाने की कर दी, मूड खराब हो गया, खुशी गायब हो गई, उसको योगी कहेंगे क्या? समान स्थिति। इसलिए हम सब पहले ज्ञान और योग को यथार्थ जीवन में उतारते हैं, फिर अपने जीवन में वो दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है। जितना हमारे जीवन में दिव्य गुण आते जाते हैं, उन दिव्य गुणों के आधार से दिखाई देता है कि सचमुच ये तो देवता है, संगम पर है देवता, भविष्य में बनेगा वो तो बाद की बात है, संगम पर ही उसके अंदर वो सब दिव्य गुण अपने आप चलन से दिखाई देते हैं। मधुरता है, बड़ा सरल स्वभाव है, सबके साथ मिल करके चलता है, सबको सम्मान देता है, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करता है, कहते हैं तो देवता है, बना बनाया देवता है, जैसे कहते हैं ना, बना बनाया देवता है। तो इस समय हम सबको संगम पर वो देवताई लक्षण अपने जीवन में धारण करने। कभी कभी मैं हंसते हंसते कहता हूं अपने भाई बहनों को जो समर्पित हैं या आते हैं मधुबन में, इस कोरोना काल में बहुत मदद की है सबको। पहले हम लोग प्लेन में जाते थे, कहीं जाते थे, इतना धक्का धुक्की इधर उधर, अभी सब शांत हो गए, दूर दूर खड़े हैं, टच नहीं करना किसी को, कितना अच्छा लगता है। मैं कल हैदराबाद से आया, प्लेन से आया, सब लाइन से उठेंगे सीट से, ऐसे नहीं भड़बड़ भड़बड़ करके प्लेन खड़ा हुआ, खड़े हो जाओ, सब लाइन से उठेंगे, दूर रहेंगे, कोई किसी को टच नहीं करेगा, सब अपने मुंह में मास्क बांधे हुए हैं, कोई खाना पीना नहीं मिलेगा प्लेन के अंदर, कोई खाएगा नहीं, चुपचाप बैठे हैं। इतनी साइलेंस थी, पूरा प्लेन फुल था, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा था, सबके मुंह बंधे हुए हैं। क्या बाबा ने सचमुच संगम पर ही सबको सुधार दिया, सुधरे हुए दिखाई दिए थोड़े से, जैसे डरे हुए लोग, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, देख करके बड़ी खुशी हो रही थी। वो बेचने वाला नहीं बेचता कुछ भी प्लेन के अंदर, अभी अगर कोई बहुत प्यासा होता है तो पानी मांगता है तो बोतल में देती आकर के, बोतल दे देती है, एक ले लो बस। तो हमने कहा कि पहले हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, भाई खाना मिलता है, सौगात मिलती है, लोग भड़बड़ भड़बड़ भाग 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 करके जाते हैं, धक्का देते हैं, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये देवता ही लक्षण नहीं है। देवताओं का चलना कैसे होगा? एक बार मधुबन में दीदी दादी हमारी बड़ी रमणीक थी, आप लोगों ने तो पता नहीं, नए नए हैं, दादी को तो बहुतों ने देखा होगा, हाथ उठाओ दादी को जिसने देखा, दादी को तो बहुतों ने देखा, दीदी को, दीदी मनमोहिनी को, एक बहन बैठी, बस एक ही, बस अच्छा दो हैं, दीदी मनमोहिनी को देखा तूने? ये बहन ने देखा। क्या नाम है आपका जी? कहां से हो? दिल्ली मोहम्मद पुरा इन्होंने देखा, दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा। जब हम पहली बार आए ना 71 में, तो एक दिन एक स्वेज, यहां मधुबन में स्वेज बहुत मनाते थे, दो संदेशियों को, छोटा हाल है जो हिस्ट्री हाल, दीदी ने उनको कहा कि तुम चांस में जाने वाली दोनों बहनें, तुम चांस में जाओ और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का आह्वान करो, बुलाओ उनको, क्योंकि साक्षात्कार में तो सब दिखता है ना, ट्रांस में हम उनका स्वागत करेंगे, उनको यहां पर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे देवताओं को। ये भी बाबा का खेल पाल है, ये संशय में नहीं आना कैसे आएगा, ब्रह्मा की आत्मा यहां है, मम्मा की आत्मा अभी अव्यक्त वतन में भी नहीं गई है, यही तो सरस्वती लक्ष्मी और नारायण बनने वाले हैं। लेकिन इनका जो संपूर्ण स्वरूप है, उनके जो दिव्य संस्कार हैं, बाबा कभी भी उनको इमर्ज कर सकता है। तो दो संदेशियों को बिठाया गद्दी पर, दोनों का श्रृंगार किया, एक को नारायण की ड्रेस पूरी पहनाई और एक को लक्ष्मी की ड्रेस पहनाई, एक सील दादी थी और एक संतरी दादी थी, दो दादियां थी, दोनों ट्रांस मैसेज, बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी। तो संतरी दादी को श्री लक्ष्मी की ड्रेस पहनाई, सील दादी को श्री नारायण की ड्रेस पहनाई, और दोनों जब ट्रांस में गई तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा आ गई, आवाहन हुआ, हम सब बैठे थे सामने, देखी आंखों देखी बात सुना रहा हूं, हम भी थे साथ में। और जब वो दोनों आत्माएं प्रवेश हुई आकर के, अरे उनकी दृष्टि, उनका चलना, उनका देखना, क्या उनकी रुहाब था जैसे, तो दीदी ने कहा थोड़ा चल के तो दिखाओ कैसे देवताएं चलते हैं, एकदम एक के पीछे बहुत प्यार से चल रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, फिर एक को दूसरे के मुंह में खिला रहा है, दूसरा मुंह दूसरे के मुंह में खिला रहा है, इतना सुंदर दृश्य था, उनकी रॉयल्टी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके चेहरे का रुहाव, उनका चलना, उनका बैठना। तो जब उन आत्माओं का आह्वान हुआ, करीब एक दो घंटा यहां रहे, खेल पाल हुआ, ग्वाल बाल भी बच सजाए हुए थे, डांस भी हुआ, उसके बाद जब वो दृश्य पूरा हुआ तो हमें ये शिक्षा दी गई, यही बताया गया, देखो देवताएं चलते कैसे थे, देवताएं खाते कैसे हैं, कितना थोड़ा खाते हैं, कितना प्यार से स्वीकार करते हैं, दूसरों खिलाते हैं, कितनी उनकी रूहानी प्यार भरी दृष्टि है, कैसे मुस्कुराते हैं, जोर से हंसते नहीं हैं, जोर से बोलते नहीं हैं, क्या ये देवता ही लक्षण आपने धारण किया जो देवता बनने वाले हो। स्वर्ग में चलना है, देवता बनना है, तो कम से कम कभी अपने आप से पूछना चाहिए, इतने ऊंचे लक्ष्य को हम प्राप्त करने वाले। आज दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बैरिस्टर बनना चाहता है, तो अपने पढ़ाई के आधार से वो अपने को चेक करता है, क्या वो लक्षण, वो क्वालिटीज मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं। अगर हम अभी अभी कहें कलयुग विनाश हो जाए, हम सत्ययुग में चले जाएं, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को परमधाम घर में तो बिठाएगा नहीं, 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हम सब हैं, तो हम यहां से जाएंगे परमधाम को टच करेंगे और नई दुनिया में आएंगे, 9 लाख के अंदर ही हैं हम सब, तो पहले पहले आने वाले हैं कि बाद में आएंगे, पहले आएंगे ना सभी। जब पहले पहले सतयुग में आना है और सतयुग का प्रारंभ करना है, तो अभी ही सब लक्षण धारण करने पड़ेंगे। तो कितनी परसेंटेज में, 5 बातें चेक कर लेना, देवताओं की विशेषता में सर्व गुण संपन्न, कितने मेरे अंदर गुण अभी तक आए हैं, कौन कौन से गुण अभी तक नहीं आए हैं, और आए हैं तो परसेंटेज क्या है उसकी, 100% आए हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, चंद्रमा की तरह हर कला में परफेक्ट संपूर्ण, निर्विकारी, किसी भी विकार का कोई भी अंश, केवल एक ब्रह्मचर्य का नहीं, पवित्रता का नहीं, लेकिन पांचों विकारों का जरा भी अंश किसी भी प्रकार से, उसके बाल बच्चे भी लगाओ झुकाओ, ईर्ष्या द्वेष मान अपमान लगाव, आसक्तियां, आलस्य, अलबेलापन, ये सब विकार ही हैं, उनके बच्चे हैं। संपूर्ण निर्विकारी आत्मा संगम पर कितनी परसेंट बनी है चेक कर लो। डबल अहिंसक, न क्रोध की हिंसा है न काम की हिंसा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम। हर मर्यादा में पुरुषोत्तम कहां तक हम बने हैं, सब ईश्वरीय मर्यादाएं ब्रह्मा कुमारी की सब डिक्शनरी के अंदर स्पष्ट है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे ब्राह्मण जीवन की ईश्वरीय मर्यादाओं का पता नहीं है। जब मर्यादाओं के अनुसार हम चलते हैं, हमारा खाना, बोलना, बैठना, सोना, ड्रेस, पहरवाई, सब मर्यादा अनुसार है, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मर्यादा हमारे लिए सुरक्षा कवच है। इसलिए पांचों बातें, सर्वगुण, सर्व कलाएं, संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी परसेंटेज में मैं आत्मा बनी हूं जो कहता हूं मैं शरीर छोड़ करके देवता बन जाऊंगा। बाबा बनाएगा तो जरूर, रास्ते दो हैं, एक है बाबा की याद से आत्मा को प्योर बना लो, अच्छी तपस्या करो, लगन लग जाए, और दूसरी फिर सजाएं। सजा खाने वाला पद कम हो जाएगा, सम्मान से जाने वाला ऊंचा पद प्राप्त कर लेगा, अंतर इतना ही आएगा। तो इस संगम के समय पर उस सतयुग के सुख का अनुभव करने के लिए श्री कृष्णपुरी के आदि में आने वाली आत्मा की अपनी विशेषताएं, कई बार बाबा कहता है जब नया भवन बनता है उसका सुख अपना होता है, 50 साल 100 साल के बाद आएंगे तो कुछ न कुछ उसमें पुरानापन आ जाएगा। तो इस संगम पर हम सब चेक करें, क्या ऐसे दिव्य गुणों से मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूं, बनी हूं, जो मैं देवी देवताओं के रूप में उतरूं तो सब प्राप्तियों से भरपूर हूं, संपन्न हूं, प्रकृति हमारी दासी बन करके हमारी सेवा करे। अभी तो प्रकृति नुकसान कर रही है, अभी तो प्रकृति दुख दे रही है, अभी हम तक सब कर्म इंद्रियों के प्रकृति के अधीन होकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस प्रकृति की सेवा की है, प्रकृति को योग का दान दिया है, सहयोग दिया है, तो आने वाली सतयुगी दुनिया में हर आत्मा के लिए प्रकृति दासी होगी। और बाबा कई बार कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, सतयुग के अंदर फैमिली के रूप में राज्य चलेगा। इस समय जैसे मधुबन एक फैमिली है, परिवार है, कोई उसमें धोबी घाट का काम कर रहा है, कोई उसमें कारपेंटरी का काम कर रहा है, कोई उसमें सफाई का काम कर रहा है, कोई नाई का भी काम कर रहा है, कोई भोजन बनाने का काम कर रहा है, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन कोई भी भेद नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर वर्ण बन गए, जातियां बन गई, अलग अलग उनको उसी दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। पहले जमाने में हमारे बचपन में ही कभी हम पैसा दे करके बाल नहीं कटवाते थे, कभी हम कपड़े धुलाई करने के लिए पैसा नहीं देते थे, धोबी आएगा, नाई आएगा, जूता बनाने, चप्पल बनाने वाला आएगा, वो सब घर का काम करेगा करके, और जब फसल तैयार होगी, गेहूं तैयार होगा, अनाज तैयार होगा, तो पहले उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा जिससे वो भी चल सके, उसका शरीर निर्वाह हो सके। सिस्टम ये थी, पैसे से लेन देन नहीं होती थी, कलयुग के अंत तक भी ये सिस्टम चली है। और बाबा कहते सतयुग के अंदर भी यही लेन देन होगी, जैसे मधुबन के अंदर कोई को चाहिए डिपार्टमेंट वाले को लिख करके देगा ये चीज हमें चाहिए, बाहर खरीदने हमें कोई चीज जाने की जरूरत नहीं है, हम समर्पित हैं, हमें साबुन चाहिए, हमें तेल चाहिए, हमें चप्पल जूता चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, कोई भी आवश्यकता, 2 मास 1 मास के बाद हम लिख करके डिपार्टमेंट को दे देंगे, डिपार्टमेंट वाला टाइम देगा और हम ले आएंगे जाकर के, हम खरीदेंगे नहीं, हम पैसा दे करके नहीं लेंगे। लेकिन जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट में हम उस प्रकार का उसको सहयोग देंगे, उसको जो आवश्यकता, मान लो आज मुझे कारपेंटरी की आवश्यकता है, तो कारपेंटर का काम जो भी है, अगर हमें ऑफिस में या घर में कुछ भी कराना है तो वो पैसे पर नहीं काम करेगा, लेकिन अपना घर समझ के करेगा। ये एक परिवार की सिस्टम है और यही सिस्टम सतयुग के अंदर चलती है। इसलिए राजा और रानी दोनों प्रजा, जैसे राजा माँ बाप हैं राजा रानी, और प्रजा उनके बच्चे हैं। काम सब अलग अलग कर रहे हैं, कोई सफाई का करेगा, कोई धोबी का करेगा, कोई करेगा, लेकिन कोई उस दृष्टि से, उस व्यवहार से नहीं, इस जाति का है, इस धर्म का है, ये अलग है, ये अलग है, वो भेद नहीं होगा, परिवार होगा। तो ऐसी स्वर्णिम दुनिया बनाने का कार्य जिसमें कोई भी प्रकार का भेद न रहे। अभी हम सब क्या हैं? एक ब्राह्मण कुलभूषण है। कोई दूसरी जाति है यहां? कोई कहे मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं नेपाली हूं, कोई कह सकता है? बाबा के घर में सब एक है। अगर कोई कहता है, माना उसने यथार्थ ज्ञान को समझा नहीं है, वो देवता बनने के लायक नहीं है। इसलिए कोई भी जाति जो लौकिक थी, बाबा ने हमारी अलौकिक जाति ब्राह्मण जाति बना दी। हम सब ब्राह्मण धर्म के हैं, इसलिए अगर कोई बहुत नीच जाति का लौकिक दुनिया के अंदर ऐसा है और वो बाबा का बच्चा बन गया, वो ब्राह्मण बन गया। हम उसके हाथ का खाते हैं, वो हमारे लिए भंडारा बनाता है, वो हमारे लिए सब काम कर लेता है, हम उसको उस नजर से नहीं देख सकते, उस जाति का है। वो सब भेद बाबा ने संगम पर खत्म कराए हैं। है कोई भेद यहां? आपको पता है किस जाति के लोग, कई मुस्लिम भी होंगे लौकिक में, बाबा के बच्चे बन गए, समर्पित हो गए आकर के, सब नियम मर्यादाएं धारण कर ली, लौकिक खान पान जीवन चेंज हो गया, अलौकिक बन गए। इसलिए कोई भी हद की जाति नहीं, हद का भेद नहीं, सब एक फैमिली के हैं। हमारे माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, हम सब आपस में भाई बहन, और कोई नाता नहीं। सतयुग के सिस्टम के अंदर भी यही चलेगा। परिवार अलग अलग छोटे छोटे होंगे, लेकिन राजा माता पिता है, प्रजा उसकी रचना है, और लेन देन में भी ऐसा ही हिसाब किताब चलेगा। बाबा ने बहुत इस सतयुग की कई प्रकार की ऐसी बातें कई मुरलियों में अव्यक्त रूप में भी सुनाई हैं, और साकार में भी कुछ मुरलियों में आती हैं बातें। तो ऐसी स्वर्णिम दुनिया का प्लान है भगवान का, और भाग्यवान हम सब आत्माएं हैं जो उनके इस कार्य में हमें सहयोग करने का गोल्डन चांस मिलता है। हर एक समझना, हम आने वाली नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। उसके लिए मुझे कुछ न कुछ बाबा के कार्य में इस समय मदद करनी है। इस समय अगर हम सहयोगी बन जाएंगे तो रिटर्न देने के लिए भगवान को हम बांध लेंगे। इसलिए कई बार बाबा एक शब्द उच्चारण करते हैं, ये बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये बैग बैगेज ट्रांसफर करने का स्थान है। जैसे अगर कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग जमा करा देते और वहां जाकर के हम ले लेते हैं। सतयुग के अंदर हमें सब प्रकार की प्राप्ति हो, धन धान्य संपन्न जीवन हो, भरपूर हम रहें, क्या हमने इस संगम पर इंश्योरेंस कराया है? क्या हमने इस समय अपने बैग बैगेज को ट्रांसफर किया है? कुछ भी नहीं किया है तो सतयुग में कहां से मिल जाएगा करके। इसलिए संगम पर ट्रांसफर करो जो कुछ है, बाबा आपका है, आपके कार्य के लिए है। इस सतयुग की स्थापना में मेरे तन का सहयोग लग जाए, मेरे मन का लगे, मेरे धन का लगे, जो मुझे आपने दिया है मैं आपके इस सेवा में कार्य में सफल कर लूं। इस संगम पर जिसने समय सफल किया, जिसने श्वास सफल की, जिसने संकल्प सफल किए, जिसने अपनी संपत्ति सफल की, ये चार शक्तियां हैं, संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति। जिसने इस समय अपनी चारों शक्तियों को बाबा के इस कार्य में स्थापना के समय लगाई है, वो सतयुग के अंदर रिटर्न में जब इसको प्राप्त करेंगे तो कभी भी उनकी श्वास रुकेगी नहीं, कोई श्वास की बीमारी नहीं होगी, कभी हार्ट फेल नहीं होगा, पूरा समय राज्य करेंगे जिन्होंने समय सफल किया है। और जिन्होंने धन सफल किया है थोड़ा भी बाबा के कार्य में, उनके तो महल सोने चांदी हीरे के बन जाएंगे, आकर रतन जड़ित महल हो जाएंगे, वो धन धान्य संपन्न बन जाएंगे। इसलिए संगम के महत्व को जरूर समझना। संगम इसीलिए है, कलयुग और सतयुग के बीच में है। इस समय हम बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है और हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है। बच्चे, इन चारों शक्तियों को कहीं भी नष्ट नहीं करना। समय को, संकल्प को, अपनी श्वासों को, श्वासों श्वास बाबा को याद करो। संकल्प बहुत सकारात्मक पॉजिटिव बनाओ। संगम का समय एक एक क्षण बहुत कीमती है, पर चिंतन पर दर्शन व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना। और जो कुछ बाबा ने दिया है संपत्ति, वो केवल बाबा के कार्य में सफल हो जाए, बस ये भी कहीं व्यर्थ न जाए। तो इस संगम के महत्व को समझेंगे तो आने वाली दुनिया स्वर्णिम दुनिया है और आई की आई सब प्रकार के वैभव हैं, सब प्रकार की संपत्ति है, सब प्रकार से भरपूर भारत है, अन्न धन जल सब में भरपूर और संपन्न स्वच्छ है। इसलिए ऐसी दुनिया बनानी है और हम सबको क्या करना है, ट्रांसफर होना है। ओके, ओम शांति।